त्रिपुरों की उत्पत्ति और उनके नाश का प्रसंग। दुर्योधन ने कहा, महाराज शल्य, पूर्व काल में महर्षि मार्कंडेय ने मेरे पिताजी से एक उपाख्यान कहा था। वह सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। उसे सुनिए और मैंने जो प्रार्थना की है उसके विषय में किसी प्रकार का विचार न कीजिए। पहले तारकामय नाम का एक संग्राम हुआ था। उसमें देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर दिया था। उस समय तारक दैत्य के ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नाम के तीन पुत्र थे। उन्होंने कठोर नियमों का पालन करते हुए बड़ी ही भीषण तपस्या की और अपने शरीरों को बिल्कुल सुखा दिया। उनके संयम, तप, नियम और समाधि से पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्हें वर देने के लिए पधारे। उन तीनों दैत्यों ने सर्वलोकेश्वर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे कहा, पितामह, आप हमें ऐसा वर दीजिए कि हम तीन नगरों में बैठकर इस सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से विचरते रहें। इस प्रकार 1000 वर्ष बीतने पर हम एक जगह मिले। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाएं, तो उस समय जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। इस पर श्री ब्रह्मा जी ऐसा ही हो, यह कहकर अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से ऐसा वर पाकर वे दैत्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने आपस में सलाह करके मय दानव के पास जाकर तीन नगर बनाने को कहा। मतिमान मय ने अपने तप के प्रभाव से तीन पुर तैयार किए। उनमें एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहे का पृथ्वी में रहा। ये तीनों ही नगर इच्छा अनुसार आ जा सकते थे। इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई 100-100 योजन थी। इनमें आपस में सटे हुए बड़े-बड़े भवन और खुली हुई सड़कें थी तथा अनेकों प्रासादों और राजद्वारों से इनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इन नगरों के अलग-अलग राजा थे। सुवर्णमय नगर तारकाक्ष का था, रजतमय कमलाक्ष का और लोहमय विद्युन्माली का। इन तीनों दैत्यों ने अपने शस्त्र बल से तीनों लोकों को अपने काबू में कर लिया। इन दैत्यों के पास जहां तहां से करोड़ों दानव योद्धा आकर एकत्रित हो गए थे। इन तीनों पुरों में रहने वाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता, उसकी उस कामना को मयासुर अपनी माया से उसी समय पूरा कर देता था। तारकाक्ष के हरि नाम का एक महाबली पुत्र था। उसने बड़ी कठोर तपस्या की। इससे ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए। उन्हें संतुष्ट देखकर हरि ने यह वर मांगा कि हमारे नगर में एक ऐसी बावड़ी बन जाए कि जिसमें डालने पर शस्त्र से घायल हुए योद्धा और भी अधिक बलवान हो जाएं। इस प्रकार ब्रह्मा जी से वर पाकर तारकाक्ष के पुत्र हरि ने अपने नगर में एक मुर्दों को जीवित कर देने वाली बावड़ी बनवाई। दैत्य लोग जिस रूप और जिस वेश में मरते थे, उस बावड़ी में डालने पर वे उसी रूप, उसी वेश में जीवित होकर निकल आते थे। इस प्रकार उस बावड़ी को पाकर वे सारे लोगों को कष्ट देने लगे तथा अपनी घोर तपस्या से सिद्धि पाकर वे देवताओं के भय की वृद्धि करने लगे। युद्ध में उनका किसी भी प्रकार नाश नहीं हो सकता था। अब तो वे लोभ और मोह से अंधे होकर एकदम मतवाले हो गए। उन्होंने लज्जा को एक और रख दिया और सब और लूट मार करने लगे। बरदान के मद में चूर होकर वे समय समय पर जहां तहां देवताओं को भगाकर स्वेच्छा से विचरने लगे। उन मर्यादाहीन दुष्ट दानवों ने देवताओं के प्रिय उद्यान और ऋषियों के पवित्र आश्रमों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। इस प्रकार जब सब लोग पीड़ित होने लगे, तो मरुदगण को साथ लेकर देवराज इंद्र ने चढ़ाई कर दी और उन नगरों पर वे सब ओर वज्र प्रहार करने लगे। किंतु जब वे ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उन अभेद्य नगरों को तोड़ने में समर्थ न हुए, तो भयभीत होकर अनेकों देवताओं को साथ ले ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें दैत्यों के कारण मिलने वाली अपने कष्टों की कहानी सुनाई। इस प्रकार सारा हाल सुनाकर उन्होंने प्रणाम करके ब्रह्मा जी से उनके वध का उपाय पूछा। देवताओं की सब बातें सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, जो दैत्य तुम लोगों को दुख दे रहा है, वह तो मेरा अपराध करने में भी नहीं चूकता। इसमें संदेह नहीं, मैं सब प्राणियों के लिए समान हूँ, परंतु मेरा नियम है कि अधर्मियों का तो नाश ही करना चाहिए। इसके लिए उन तीनों नगरों को एक ही बाण से तोड़ना होगा, किंतु इस काम को करने में श्री महादेव जी के सिवा और कोई समर्थ नहीं है। इसलिए तुम सब उनके पास जाकर यह वर मांगो, वे अवश्य उन दैत्यों को मार डालेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर इंद्र आदि सब देवता उन्हीं के नेतृत्व में श्री महादेव जी की शरण में गए। भगवान शंकर अपने शरणापन्नों के भय के समय अभय दान करने वाले और सबके आत्मस्वरूप हैं। उनके पास जाकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें तेजो राशि पार्वती पति श्री महादेव जी का दर्शन हुआ। सभी ने पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और महादेव जी ने आशीर्वाद द्वारा सत्कार करके सबको उठाया। फिर वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, कहो कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। भगवान की आज्ञा पाकर देवता लोग स्वस्थ चित्त होकर कहने लगे, देवाधिदेव आपको नमस्कार है, प्रजापति भी आपकी स्तुति करते हैं और सबने भी आपकी स्तुति की है। आप सभी की स्तुति के पात्र हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं। शंभो, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सबके आश्रय स्थान और सभी का संहार करने वाले हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। आप सभी के अधीश्वर और नियंता हैं तथा वनस्पति, मनुष्य, गौ और यज्ञों के पति हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। देव, हम मन, वाणी और कर्मों से आपके शरणापन्न हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, देवगण, भय को छोड़िए और बताइए मैं आपका क्या काम करूं। इस प्रकार जब महादेव जी ने देवता, ऋषि और पितृगण को अभय दान दिया, तो ब्रह्मा जी ने उनका सत्कार करके संसार के हित के लिए कहा, सर्वेश्वर, आपकी कृपा से इस प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित होकर मैंने दानवों को एक महान वर दे दिया था। उसके कारण उन्होंने सब प्रकार की मर्यादा तोड़ दी है। अब आपके सिवा उनका और कोई भी संहार नहीं कर सकता। देवता लोग आपकी शरण में आकर यही प्रार्थना कर रहे हैं, सो आप इन पर कृपा कीजिए। तब महादेव जी ने कहा, देवताओं, मैं धनुष बाण धारण करके रथ में सवार हो संग्राम भूमि में तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा। अतः तुम मेरे लिए एक ऐसा रथ और धनुष बाण तलाश करो जिनके द्वारा मैं इन नगरों को पृथ्वी पर गिरा सकूं। देवताओं ने कहा, देवेश्वर, हम तीनों लोकों के तत्वों को जहां तहां से इकट्ठे करके आपके लिए एक तेजोमय रथ तैयार करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने विश्वकर्मा के रचे हुए एक विशाल रथ को महादेव जी के लिए तैयार किया। उन्होंने विष्णु, चंद्रमा और अग्नि को बाण बनाया तथा बड़े-बड़े नगरों से भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपों से व्याप्त वसुंधरा को ही उनका रथ बना दिया। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपालों को घोड़े बनाया एवं मन को आधार भूमि बना दिया। इस प्रकार जब वह श्रेष्ठ रथ तैयार हो गया तो महादेव जी ने उसमें अपने आयुध रखे, ब्रह्मदंड, कालदंड, रुद्रदंड और ज्वर, ये सब ओर मुख किए तथा उस रथ की रक्षा में नियुक्त हुए। अथर्वा और अंगीरा उनके चक्र रक्षक बने। ऋग्वेद, सामवेद और समस्त पुराण उस रथ के आगे चलने वाले योद्धा हुए। इतिहास और यजुर्वेद पृष्ठ रक्षक बने तथा दिव्य वाणी और विद्याएं पार्श्व रक्षक बनी। स्तोत्र तथा वष्टकार और ओंकार रथ के अग्र भाग में सुशोभित हुए। उन्होंने छह ऋतुओं से सुशोभित संबत्सर को अपना धनुष बनाया तथा अपनी छाया को धनुष की अखंड प्रत्यंचा के स्थान में रखा। इस प्रकार रथ को तैयार देख वे कवच और धनुष धारण कर विष्णु, सोम और अग्नि से बने हुए दिव्य बाण को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तब देवताओं ने सुगंध युक्त वायु को उनके लिए हवा करने को नियुक्त किया। तब महादेव जी समस्त युद्ध सज्जा से सुसज्जित हो पृथ्वी को कंपाए मान करते रथ पर सवार हुए। बड़े-बड़े ऋषि, गंधर्व, देवता और अप्सराओं के समूह उनकी स्तुति करने लगे। इस समय भगवान शंकर खड़ग, बाण और धनुष धारण करके बड़ी ही शोभा पा रहे थे। उन्होंने हंसकर कहा, मेरा सारथी कौन बनेगा? देवताओं ने कहा, देवेश्वर, आप जिसे आज्ञा देंगे, वही आपका सारथी बन जाएगा। इसमें आप तनिक भी संदेह न करें। तब भगवान ने कहा, तुम स्वयं ही विचार करके जो मुझसे श्रेष्ठ हो, उसे मेरा सारथी बना दो। यह सुनकर देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करके कहा, भगवन, आपने हमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारा हित करूंगा, सो अपना यह वचन पूरा कीजिए। देव, हमने जो रथ तैयार किया है, वह बड़ा ही दुर्धर्ष है। भगवान शंकर उसके योद्धा हैं, पर्वतों के सहित पृथ्वी ही रथ है तथा नक्षत्र माला ही उसका वरुत है, किंतु उसका कोई सारथी दिखाई नहीं देता। सारथी इन सब की अपेक्षा बढ़ चढ़कर होना चाहिए, क्योंकि रथ तो उसी के अधीन रहता है। हमारी दृष्टि में आपके सिवा और कोई भी इसका सारथी बनने योग्य नहीं है। आप सर्वगुण संपन्न और सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः अब आप ही रथ पर बैठकर घोड़ों की रास संभालिए।